एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
ताकि मैं हर जंग घुटनों जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। तुझ में मेरी सांसें हैं, रचना तू है मेरा, कभी ना अकेला है तू, आंखों का तारा तू मेरा प्यारा, सीने से रखता तुझे, तुझ में मेरी सांसें हैं, रचना तू है मेरा, कभी ना अकेला है तू, आंखों का तारा तू मेरा प्यारा, सीने से रखता तुझे। हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं, हम तेरा वचन को सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को हमारे हृदयों को खोल दे, मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो पिता, उन्हें तेरे वचन को समझने और तेरे राह में चलने के लिए अगुवाई कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरे वचनों को प्रस्तुत कर सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है, जो प्रथम है वे अंतिम होंगे। हम मत्ती 20 का 1 से 16 में प्रभु यीशु मसीह का एक दृष्टांत पाते हैं, और मत्ती 19 का 30 में यह पदस्थल हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, इसी प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम होंगे, और जो प्रथम है वे अंतिम होंगे, क्योंकि बुलाए तो बहुत होंगे परंतु चुने हुए थोड़े होंगे। यीशु मसीह इस दृष्टांत में एक गृहस्वामी जो अपने दाख बारी में अपने काम करने वालों को बुलाता है, उसके विषय में दिया गया है। वह स्वामी जाता है बाजार में और लोगों को अपने बारी में काम करने के लिए सुबह सुबह बुलाने जाता है और अपना बारी में भेजता है। बाद में जाता है और पाता है कुछ वहाँ पर थे कुछ लोग, उन लोगों को भी बुलाता है और भेज देता है और कहता है कि उन्हें जो उचित है वह देगा। और शाम के समय वह जाता है, जब करीब 5 बजे का समय था, वह जाता है और देखता है कि कुछ लोग अभी भी बाजार में थे, और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों पड़े हुए हो अभी तक, बिना काम के कहीं काम करने नहीं गए हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हमें किसी ने अपने काम में नहीं बुलाया। तो वह गृहस्वामी उन्हें कहता है, तुम भी जाओ मेरे दाख के बारी में काम करो और जो उचित है वह तुम्हें मिलेगा। ये लोग शाम को 5 बजे का समय जाते हैं और उसके दाख के बारी में काम करते हैं। लेकिन अंत में जो मालिक था अपने प्रबंधक को बुलाता है और अपने प्रबंधक को कहता है, इन्हें इनका पुरस्कार दो, इन्हें उनका काम का प्रतिफल दो। और हर एक को दिया जाता है, शुरू में जो अंत में बुलाए गए थे उनको पहले दिया जाता है और बाद में जो शुरू में बुलाए गए थे सुबह सुबह काम करने के आए थे उनको भी वह उनका श्रम का काम का उसका पैसा देता है। हम पाते हैं इस दृष्टांत में कि दृष्टांत के पहले मजदूर उन लोगों को दर्शाते हैं जो अपनी सेवाओं के कारण दूसरों से बेहतर होने का दावा करते हैं। वे अपना काम आत्म प्रशंसा की भावना से करते हैं और इसमें आत्म त्याग और बलिदान नहीं लाते। हो सकता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ईश्वर की सेवा करने का दावा किया हो। हो सकता है कि वे कठिनाई, अभाव और परीक्षण को सहने में सबसे आगे रहे होंगे और इसलिए वे खुद को एक बड़े इनाम के हकदार समझते हैं। वे मसीह के सेवक होने के विशेष अधिकार से ज्यादा इनाम के बारे में सोचते हैं। उनके विचार में उनके श्रम और बलिदान उन्हें दूसरों से ऊपर सम्मान पाने का हकदार बनाते हैं। और क्योंकि इस दावे को मान्यता नहीं दी जाती है इसलिए वे अपमानित होते हैं। अगर वे अपने काम में एक प्रेमपूर्ण भरोसेमंद भावना लाते तो वे पहले बने रहते, लेकिन उनका झगड़ालू शिकायत करने वाला स्वभाव मसीह जैसा नहीं है और उन्हें अविश्वसनीय साबित करता है। यह उनकी आत्म उन्नति की इच्छा, ईश्वर के प्रति उनके अविश्वास और अपने भाइयों के प्रति उनकी ईर्ष्यालु द्वेषपूर्ण भावना को प्रकट करता है। प्रभु की भलाई और उदारता उनके लिए केवल बड़बड़ाने का एक अवसर है। इस प्रकार वे दिखाते हैं कि उनकी आत्माओं और ईश्वर के बीच कोई संबंध नहीं है। वे मास्टर वर्कर या काम करने में गुरु के साथ सहयोग के आनंद को नहीं जानते। परमेश्वर के लिए इस संकीर्ण स्वार्थी भावना से अधिक अपमानजनक कुछ भी नहीं है। वह ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहता है जो इन चरित्रों को प्रकट करते हैं। वे उसकी आत्मा के काम के प्रति असंवेदनशील हैं। यहूदियों को सबसे पहले प्रभु की दाख की बारी में बुलाया गया था और इस वजह से वे घमंडी और आत्मधर्मी थे। वे अपनी सेवा के लंबे वर्षों को दूसरों की तुलना में बड़ा इनाम पाने का हकदार मानते थे। उनके लिए इससे ज्यादा परेशान करने वाली कोई बात नहीं थी कि अन्य जातियों को परमेश्वर की बातों में उनके बराबर विशेष अधिकार दिए जाने थे। मसीह ने उन शिष्यों को चेतावनी दी जिन्हें पहले उनका अनुसरण करने के लिए बुलाया गया था। कहीं ऐसा ना हो कि उनके बीच भी वही बुराई पनपने लगे। उसने देखा कि चर्च की कमजोरी, कलीसिया की कमजोरी अभिशाप आत्मधार्मिकता की भावना होगी। लोग सोचेंगे कि वे स्वर्ग के राज्य में जगह पाने के लिए कुछ कर सकते हैं। वे कल्पना करेंगे कि जब वे कुछ प्रगति कर लेंगे तो प्रभु उनके पास उनकी मदद के लिए आएंगे। इस प्रकार उनमें स्वयं की अधिकता होगी और यीशु की कम। बहुत से लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत उन्नति की होगी वे घमंडी हो जाएंगे और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझेंगे। वे चापलूसी के लिए उत्सुक होंगे, ईर्ष्यालु होंगे यदि उन्हें सबसे महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। इस खतरे से मसीह अपने शिष्यों की रक्षा करना चाहते हैं। अपने आप में योग्यता का घमंड करना बेकार है। बाइबल कहती है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी शक्ति पर, ना धनवान अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यह मिलता है यिर्मयाह 9:23-24 पद में। इनाम कर्मों के कारण नहीं मिलता ताकि कोई घमंड ना करे, बल्कि यह सब अनुग्रह से मिलता है। प्यारो, बाइबल कहती है तो हम क्या कहें कि हमारे पिता अब्राहम ने जो शरीर से संबंधित है क्या पाया? क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की क्या बात है, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं। क्योंकि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब जो काम करता है उसका इनाम अनुग्रह से नहीं बल्कि कर्ज से गिना जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन उस पर विश्वास करता है, जो अधर्मियों को धर्मी ठहराता है उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। रोमियो 4:1-5 पद में हम यह पढ़ते हैं। इसलिए किसी को घमंड करने का कोई अवसर नहीं है। किसी दूसरे के प्रति द्वेष रखना या किसी दूसरे के प्रति द्वेष दिखाना अच्छी बात नहीं है। किसी को भी दूसरे से अधिक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति अधिकार के रूप में पुरस्कार का दावा कर सकता है। प्रथम और अंतिम को महान शाश्वत पुरस्कार में भागीदार होना चाहिए और प्रथम को अंतिम का खुशी से स्वागत करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे को पुरस्कार देने से ईर्ष्या करता है वह भूल जाता है कि वह स्वयं केवल अनुग्रह से ही बचा है। मजदूरों का दृष्टांत सभी ईर्ष्या और संदेह को नकारता है। प्रेम सत्य में आनंदित होता है और ईर्ष्यापूर्ण तुलना नहीं करता। जिसके पास प्रेम है वह केवल मसीह की सुंदरता और अपने स्वयं के अपूर्ण चरित्र की तुलना करता है। यह दृष्टांत सभी मजदूरों के लिए एक चेतावनी है, चाहे उनकी सेवा कितनी भी लंबी हो, चाहे उनका श्रम कितना भी प्रचुर क्यों ना हो, कि अपने भाइयों के प्रति प्रेम के बिना, ईश्वर के सामने विनम्रता के बिना वे कुछ भी नहीं है। स्वयं को सिंहासन पर बिठाने में कोई धर्म नहीं है। जो व्यक्ति आत्म प्रशंसा को अपना लक्ष्य बनाता है वह स्वयं को उस अनुग्रह से वंचित पाता है जो अकेले उसे मसीह की सेवा में कुशल बना सकता है। जब भी अभिमान और आत्मसंतुष्टि में लिप्त होते हैं तो काम खराब हो जाता है। यह हमारे द्वारा किए गए काम की अवधि नहीं है, बल्कि काम में हमारी इच्छा और निष्ठा है जो इसे परमेश्वर के लिए स्वीकार्य बनाती है। हमारे काम की अवधि नहीं प्यारो, बल्कि हमारा इच्छा और निष्ठा परमेश्वर को स्वीकार होता है। हमारी सभी सेवाओं में स्वयं के पूर्ण समर्पण की मांग की जाती है। ईमानदारी और आत्म विस्मृति में किया गया सबसे छोटा कर्तव्य भी परमेश्वर को स्वार्थ से भरे सबसे बड़े काम से अधिक प्रसन्न करता है। वह यह देखना चाहता है कि हम मसीह की आत्मा को कितना संजोते हैं और हमारे काम से मसीह की कितना समानता प्रकट होती है। वह चाहता है कि हम नम्र होकर विश्वस्तता से काम करें और उसे प्रेम करते हुए काम करें। वह हमारे द्वारा किए गए काम की मात्रा से अधिक उस प्रेम और निष्ठा को महत्व देता है जिसके साथ हम काम करते हैं। केवल तभी जब स्वार्थ मर जाता है, जब वर्चस्व के लिए संघर्ष समाप्त हो जाता है, जब कृतज्ञता हृदय में भर जाती है और प्रेम जीवन को सुगंधित बना देता है, यह केवल तभी होता है जब मसीह आत्मा में वास करता है और हम ईश्वर के साथ मिलकर श्रमिक के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका श्रम कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चे कार्यकर्ता इसे कठिन परिश्रम नहीं मानते। वे खर्च करने और काम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन यह हर्षित कार्य है जो प्रसन्न हृदय से किया जाता है। ईश्वर में आनंद यीशु मसीह के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उनका आनंद मसीह के सामने रखा गया आनंद है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जिसने मुझे भेजा है और उसका कार्य पूरा करने के लिए। यूहन्ना 4:34। प्यारो, हमें आनंदित होकर परमेश्वर का काम करना है जिस तरह हमें यीशु मसीह अपना जीवन से दिखाते हैं, जिसे हम पढ़े यूहन्ना 4:34 में, वे महिमा के प्रभु के साथ सहयोग में हैं। यह विचार सभी परिश्रम को मीठा बनाता है, यह इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, यह आत्मा को जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए उत्साहित करता है। निस्वार्थ हृदय से काम करते हुए मसीह के दुखों में भागीदार बनकर उनकी सहानुभूति साझा करके और उनके श्रम में उनके साथ सहयोग करके हम उनके आनंद की लहर को बढ़ाने और उनके महान नाम को सम्मान और प्रशंसा दिलाने में मदद करते हैं। यह परमेश्वर के लिए सभी सच्ची सेवा की भावना है। इस भावना की कमी के कारण जो लोग पहले दिखते हैं वे अंतिम बन जाते हैं, जबकि जो लोग इस भावना के अधिकारी हैं वे यद्यपि अंतिम माने जाते हैं फिर भी वे पहले बन जाएंगे। प्यारो, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद को मसीह को समर्पित कर दिया है फिर भी जो उनकी सेवा में कोई बड़ा काम करने या महान बलिदान देने का कोई अवसर नहीं देखते हैं। उन्हें इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि यह जरूरी नहीं है कि शहीद का आत्मसमर्पण ही परमेश्वर को सबसे अधिक स्वीकार्य हो। यह वह मिशनरी भी हो सकता है जिसने प्रतिदिन खतरे और मृत्यु का सामना किया है, जो स्वर्ग के अभिलेखों में सबसे ऊपर है, जो मसीही अपने निजी जीवन में ऐसा है, स्वयं के दैनिक समर्पण में उद्देश्य की ईमानदारी और विचारों की शुद्धता में, उकसावे के तहत नम्रता में, विश्वास और धर्म निष्ठा में, जो कम से कम है उसमें निष्ठा में, जो घरेलू जीवन में मसीह के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में विश्व प्रसिद्ध मिशनरी या शहीद से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। ओह, परमेश्वर और मनुष्य के चरित्र को मापने के मापदंड कितने अलग हैं। परमेश्वर ऐसे कई प्रलोभनों को देखता है जिनका विरोध किया जाता है, जिनके बारे में दुनिया और यहाँ तक कि करीबी दोस्त भी कभी नहीं जानते। घर में, दिल में प्रलोभन, वह आत्मा की अपनी कमजोरी के बावजूद उसकी विनम्रता को देखता है, बुरे विचार के लिए भी ईमानदारी से पश्चाताप को देखता है, वह अपनी सेवा के प्रति पूरे दिल से समर्पित भाव को देखता है, उसने खुद के साथ कठिन लड़ाई के घंटों को देखा है, वह लड़ाई जिसने जीत हासिल की है। यह सब परमेश्वर और स्वर्गदूत जानते हैं। उनके लिए स्मरण की एक पुस्तक उनके सामने लिखी गई है, जो प्रभु से डरते हैं और उनके नाम पर विचार करते हैं। सफलता का रहस्य हमारी शिक्षा में नहीं, हमारी स्थिति में नहीं, हमारी संख्या या सौंपी गई प्रतिभाओं में नहीं, मनुष्य की इच्छा में नहीं है। अपनी अक्षमता को महसूस करते हुए हमें मसीह का चिंतन करना चाहिए और उसके द्वारा, जो सभी शक्तियों की शक्ति है, सभी विचारों का विचार है, इच्छुक और आज्ञाकारी व्यक्ति विजय के बाद विजय प्राप्त करेंगे। और चाहे हमारे सेवा कितना भी छोटी क्यों ना हो या हमारा काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर हम सरल विश्वास के साथ मसीह का अनुसरण करते हैं तो हमें पुरस्कार से निराश नहीं होना पड़ेगा। जो सबसे महान और बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं कमा सकता, उसे सबसे कमजोर और सबसे विनम्र व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग का सुनहरा द्वार आत्म प्रशंसकों के लिए नहीं खुलता, यह आत्मा में अभिमानी लोगों के लिए नहीं खोला जाता, लेकिन अनंत द्वार एक छोटे बच्चे के कांपते स्पर्श के लिए खुल जाएंगे। उन लोगों को अनुग्रह का प्रतिफल मिलेगा जिन्होंने विश्वास और प्रेम की सरलता में परमेश्वर के लिए काम किया है। प्यारो, यह परमेश्वर का दया है कि वह हम सबों को बुलाता है और उसके राज्य में हम सबों के लिए जगह है। अगर हम छोटे से छोटे भी हैं, उसके काम करते हैं, दिल से करते हैं परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। यह जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ा, हमें एक महान बलिदान करने वाला होने से ही परमेश्वर स्वीकार करेगा, ऐसा बात नहीं है। परंतु यदि हम छोटे से छोटे कार्यों में ईमानदारी से काम करते हैं, परमेश्वर उसे ग्रहण करते हैं और हम सबों को उसके राज्य में जगह देंगे। प्यारो, परमेश्वर प्रेमी है, वह बहुत दयालु है। हम लोगों को वह बुलाता है और जो भी हम अपने काम में विश्वस्त रहते हैं, हम सबों को अपने राज्य के लिए तैयार करता है। हम सबों के लिए उसके राज्य में जगह है। इसलिए प्यारो भाई और बहनों, आइए हम उसके पुकार को सुने और उसके राह में आए। जो भी काम वो हमें देता है, छोटा से छोटा काम, उसमें हम नम्रतापूर्वक ईमानदारी से काम करें तो हम महान काम करने वालों के समान हो सकते हैं। क्योंकि बाइबल वचन कहता है जो अंतिम है वे प्रथम होंगे और जो प्रथम है वे अंतिम होंगे। क्योंकि जो प्रथम में बुलाए गए वे विश्वस्तता से नहीं करेंगे, वह लोग जलन करेंगे तो वह लोग अंतिम हो सकते हैं। लेकिन जो नम्रतापूर्वक विश्वस्तता से काम करेंगे, छोटे काम में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनका लेखा लेता है और उनको अपना राज्य में अच्छा जगह देगा। इसलिए आइए हम सब विश्वस्तता से उसके पास आए और उसके काम को करें। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। तो हम सबों को बुलाया है और तू हम सबों को पुरस्कार देना चाहता है अपने कृपा के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार, और इसीलिए हमें विश्वस्त रहने के लिए मदद कर पिता। मेरे हर एक श्रोताओं को तू आशीष दे। हम सबों को तेरे
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।